राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 9 सितंबर 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे नागौर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 संसार में विचित्र विचित्र बातें हैं और अभी कलयुग का मौका है। कलयुग में तरह तरह की बातें ऐसी होती है। नाशत दूर निवार जो आशत राखो अंग कली झोला वो बादसी रह जो एक रंग। संतों ने कहा है ये नास्तिकपना दूर करना आस्तिक पना सदैव रखना। कली झोला बहुबाजी कलयुग में कई तरह के झोला बाजेंगे तो एक रंग रहना अपने पर स्थिर रहना। ऐसी हम बात सुनते हैं कि कई कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज को ही मानो, वेद है शास्त्र है पुराण है स्मृतियाँ है इनको मत मानो, राम कृष्ण आदि अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सूर्य गणेश शक्ति इनको मत मानो, केवल गुरु को ही मानो, गुरु की पूजा करो, गुरु का ही ध्यान करो, गुरु के गुरु 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 जप करो, गुरु को ही मानो औरों को मत मानो। और कहते ऐसे कहा तो किसी ने मेरा नाम ले लिया क्योंकि वो तो कहते हैं मानो कसु वो जानते नहीं है और वे बात मानने के लिए नरकों में जाएंगे, उनका उद्धार नहीं हो कल्याण नहीं होगा, उनका पतन होगा, उनकी बात मानो परंतु वे नरकों में जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा कल्याण उनका नहीं होगा, जो स्वामी जी की बात मानेंगे उनका कल्याण नहीं होगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो वे कहते हो कहते रहे कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, आपको ठीक जचे वो मानो। मैं तो आग्रह नहीं करता हूँ, मेरी बात मैं मनाना ही नहीं चाहता हूँ और मैं तो गुरु बनता भी नहीं हूँ, गुरु की बात कहता ही नहीं हूँ। मेरे चेला बन जाओ मेरी बात ही सुनो, ऐसे जो मेरी बात सुनो चेला बन जाओ। हम तो रामायण में दो तो बातें सुनी है, एक तो कपट मुनि की बात सुनी है और एक काल लेने की बात सुनी है। तो कपट मुनि कहते हैं हमारे मंत्र लो तुम ठीक हो जाओगे, तो उनकी क्या दशा हुई आप जानते ही हो। और वो काल में था हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए गए तो बीच में काल में मिला बड़ा तपस्वी, उनके पास गए तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ राम जी के रावण में युद्ध हो रहा है, जीत तो राम जी की होगी, हम तपोबल से सब जानते हैं, क्या क्या घटना हुई जानते हैं, लक्ष्मण को मूर्छा लगी वो जानते हैं, अब तुम लो तुम्हारा प्यास लगी है, कमंड हो गया, इतने दिन से मेरे तीर्थ नहीं होगी, तो तुम स्नान करके आ जाओ, तुम्हारे को मैं गुरु मंत्र दूंगा। हनुमान जी वहाँ गए सरोवर में, तो वहाँ मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, तो उसके मारी तो वो मर गई। वो अप्सरा बन करके कहती है कि ये कपट मुनि है महाराज, ये राक्षस है, ये साधु नहीं है, इसकी बात मत मानना, ये कपट करके आपको ठग कर यहाँ रखना चाहता है कि जिसने सूर्य देव होने पर लक्ष्य मर जाए तो रावण की विजय हो जाए, इस वास्ते इसने ऐसा किया है। तो हनुमान जी महाराज के ठीक है, वहाँ जाकर क्या गुरु मंत्र लो कि महाराज मैं पहले ही आपको दक्षिणा दे देता हूँ। पहुँच में लपेटे जोर से पटका, प्राण मुक्त हो गए, मर गए। तो ऐसे गुरु होते हैं, वो मेरी बात मानो और की बात मत मानो। देवी भागवत में मैंने सुना है उन पढ़ने वालों से कि देवी भागवत में ऐसी कथा आती है, कलयुग जब दूर से आवेगा तो कलयुग के आने पर साधुओं में और ब्राह्मणों में राक्षस प्रकट होंगे। वे राक्षस पुराणों की, वेदों की, स्मृतियों की निंदा करेंगे, राम कृष्ण आदि भगवान के स्वरूपों की निंदा करेंगे, और गुरु जी को मानो और किसी को मत मानो, ऐसे कलयुग में होंगे। तो आज भी कोई ऐसा कहे तो मान लेना चाहिए कि वही अवतार है, ये राक्षसों के असुरों के अवतार आए हैं, वे कहते हैं देव भागवत में जैसा लिखा है वैसा है। इस बात से आप उन बातों को मत मानना। कलयुग है महाराज, कलयुग में उल्टा चरण चला दुनिया में, सबकी मति भोग रही है। जिन कलयुग महाराज आपने लीला अद्भुत दिखाई है, ये सब उल्टी उल्टी चीजें चलती है। हिंदुओं का नाश, गायों का नाश, जो का नाश करने पर लोग तुले हैं, सरकारी आदमी खास शासक कहलाने वाले, उनके भी गायों का नाश कर देना, हिंदुओं का अभाव, गायों का अभाव को, गायों को बिल्कुल नष्ट कर देना, बीज न रहे, विदेशी गाय लाए हुए हो जाए, देसी गाय न रहे, और संसार में हिंदू न रहे, हिंदुओं का नाश कर देना है। उसके लिए ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, गर्भपात करना, धूप लगाना, तरह तरह के उपाय सोचा जिससे हिंदू वंश न रहे। हम और हमारे दो, तो हम और हमारे दो ये तो पैदा होंगे, और मरने को तो खुला है ही, छोड़ा मरेगा ही, पर दो दो रहते थे मरेंगे ही, तो ऐसा विचार हमने सुना है, लेख नहीं पढ़ा है, बात सुनी है, वो तो मैं बिल्कुल सुनी है, सत्य बात कहता हूँ। सुना है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदुओं का बीज नहीं रहेगा, इनको नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे इनको, ऐसी स्कीम सोच करके ये किया है। आप लोगों से मैं वर्षों से कह रहा हूँ, ऐसे संतति निरोध आप मत करो, पर तो मेरी बात आप मानते नहीं, प्राय करके आप ऐसा कर रहे। मैंने कहा, मैंने सभा में सुनाया कि भाई जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की रोटी हमें मत देना, उसकी भिक्षा हमें मत देना, अन्न मेरे को मत देना। मैं तो जानता नहीं हूँ किस घर में कितना गर्भपात हुआ है, कितना रूप लगी है, कितनों की ऑपरेशन हुआ है, कितनों की नसबंदी हुई है, मेरे को तो पता नहीं, परंतु कृपा करके आप बताना जिस घर में गर्भपात हो जाए उस घर का अन्न मत देना, उस अन्न से बुद्धि भ्रष्ट होती है। शास्त्र में लिखा है, पाराशर स्मृति में लिखा है कि यत् पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ब्रह्महत्या का जो पाप है, सबसे अधिक ब्रह्महत्या को माना है, ब्राह्मण को मार देना वो ब्रह्महत्या है, इंद्र को भी ब्रह्महत्या लगी, उसका प्रायश्चित करने के लिए किया, सब किया, फिर वो अति नहीं तो उस ब्रह्म हत्या के चार भाग किए, जो एक भाग स्त्रियों को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जमीन को दिया, एक भाग जल को दिया। ऐसे चार भागों में ब्रह्म हत्या का बंटवारा करके इंद्र को शुद्ध किया। तो ब्रह्म हत्या बहुत भयंकर पाप है, उस भयंकर पाप से दुगुना पाप लगता है गर्भपात करने में। मैंने देखे हैं वो गर्भपात करने के लिए 100 रुपया लगेगा, यहाँ पर बात करो, और जो इससे गर्भपात करते हैं और उनको इनाम मिलता है, राज से इनाम मिलता है, उन डॉक्टरों को रुपये मिलते हैं, एक गर्भपात के कितने 50, 60, 100, 100, 1200 ऐसे रुपये मिलते हैं गर्भपात करने के, लोग इसमें करते हैं, उनके बड़ा प्रोत्साहन किया जाता है। वो राज में नौकरी करते हैं, उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला गया है, डाला जा रहा है कि तुम 2-3 ऑपरेशन लाओ तो तुम्हारे को नौकरी में रखेंगे, नहीं तो नौकरी में से तुम्हारे को निकाल देंगे, हम रखेंगे नहीं। ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले आदमियों ने आकर मेरे से कहा है। अभी बथानिया में एक आया था, वो पटवारी था, वो कहते 1,500-1,500 रुपया महीना का मेरे को मिलता है, परंतु कहते हैं कि ऐसे आदमी लाओ, 2-3 आदमी तो कम से महीने में लाओ तुम, जो ऑपरेशन कराने वाले, अगर नहीं लाओगे तुम्हारे को नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो मेरे को वो कहते हैं, मेरे को बड़ी घृणा हो रही है, मैं तो किसी तरह से मुफ्त में भी काम कर सकता हूँ, परंतु वो नौकरी मेरे से नहीं होती। एक शिकायत दूसरी करी कि मेरी लुगाई है, वो कहते तुम घूसखोरी से पैसा लाओ, मेरा घूस करने का विचार नहीं है, परंतु उसी मेरे को तंग कर रही है और कह रही है मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी, तुम घूस खा रही क्यों नहीं दे रहा, सब लोग घूस खाते हैं, तू नहीं घर से घूस खाता है, तो मैं छोड़ दूंगी ये तेरे को। ऐसे स्त्री और डराती है मेरे को, मेरे बड़ी आफत आ गई, इधर तो स्त्री तंग करती है और इधर राज के आदमी तंग करते हैं, झूठ कपट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए और ऑपरेशन कराने के लिए, नसबंदी कराने के लिए, 2-3 ये तो लाओ तुम कम से कम इतने, नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं रखेंगे। ऐसे आदमियों ने मेरे से कहा है साक्षात, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ऐसा बार बार डाला जाता है। अभी फलोदी में एक यज्ञ हो रहा है, उसमें बुलाया तो क्या वहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, तो मैं कभी ठीक है, तो वे क्षत्रिय शेखावत है, वे आएंगे वहाँ, तो मैं गया वहाँ से मिला, मैंने कहा हमको आप क्षत्रियों से हम आशा रखते हैं कि प्रजा की रक्षा करेंगे, और आप ऐसा कानून बनाते हो कि अभी इलेक्शन में कोई अगर खड़ा हो तो 2 संतान से अधिक वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकेगा, ये हिंदुओं के वास्ते आपने किया है, मुसलमानों के लिए नहीं है, और उसमें अगर उसके फिर 2 संतान तो है और वो सरपंच भी कहीं बन जाएगा, तो उसको बढ़ने के बाद अगर बच्चा हो गया उसके तीसरा, तो उस नौकरी से वो निकाल दिया जाएगा, ऐसा आपने फरमान फरमाया है, तो लोगों का क्यों नाश कर रहे हो। नहीं, हमने सबके लिए नहीं कहा है, हमारे ऐसा किया है, ये हिंदुओं के लिए क्या, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की क्या बात है, मुसलमानों के पैसा है 10 बच्चे हो, शब्द कहा ये बिल्कुल साक्षात धर्म सिंह जी ने, कि मुसलमान चाहे 10 बच्चे कह रहे हैं, परंतु वो अगर वहाँ नौकर रहेगा यार, उसके बाद एक भी बच्चा हो जाएगा तो उसको हम निकाल देंगे, हम नौकर कई मुसलमान बाहर से आए हैं उनको हम निकाल देते हैं, कैसा है ये बात, ऐसी लोग करते हैं से नहीं है, और मेरी बात ऐसी मारी कही कि हम मुसलमानों को निकाल देंगे, उनको वो सरपंच बन गया तो नहीं रहने देंगे, ये बड़ी जोर से मेरे से बताया। पहले 10 बच्चे हो गए उसके, और हिंदुओं के 2 बच्चे हो वो भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, ऐसी बात हो रही है। तो एक उन्होंने खूब कर दिया, आज 6-7 गुना पहले गायों का वध होता था, गो हत्या होती थी, उनसे 6 गुना 7 गुना ऐसी गो हत्या आज होती है। स्वराज होने के बाद बहुत जोर से गो हत्या की जाती है। और आपने हिंदू लोग मेला लगाते हैं, बसरा बसरी उसमें ले जाते हैं, बसरा बसरी बेचते हैं। बसरा बसरी का मांस बहुत कीमती होता है। विदेशी राज्य मुसलमानों के राज्य में गाय का 80 रुपया 90 100 रुपया किलो गाय का मांस बिकता है, और बसरा बसरी का मांस 250 रुपया किलो इतना बिकता है। इस वास्ते मेला होते है, उसमें बसरा बसरी को लोग ले जाते हैं और वो कतल करते हैं। वहाँ बसरा बसरियों की अलग थोड़ी, जैसे कोई भेड़ों की हो जिस तरह से थोड़ी वहाँ पहुँचती है, बद होता है। बैलों की बद करने की देवनार में बहुत बड़ा कसाई खाना है। हम गए थे वहाँ, भीतर तो हम जाना चाहते भी नहीं, जाने देते भी नहीं। हम मोटर से बाहर कर घूम गए, बाहर बहुत दूर में कसाई खाना है, मोटर से हम परिक्रमा लगा कर आए हैं। तो वहाँ कई बैल बैठे हैं, कई बूढ़े हैं, कई पड़े हैं बाहर, और जो नई ट्रक भर भर के बैल आते हैं, अपने आंखों से देखा, जवान जवान अच्छे अच्छे बर्द, उन बर्दों को लाकर वहाँ देते हैं। और वहाँ पर भी कसाई खाने में कत्ल होती है। कत्ल करने की रीति कहीं मैंने सुनी है ऐसी, कि ऐसा मकान बनाए हुए हैं, नीचे जाने के लिए ऐसे सड़क है, उधर में जाती बेचारे जल्दी वो गाय भीतर चल जाती है, और वहाँ बंद करके और फिर उनको मशीनों में ले जाती है। मशीनों में सींग खुर तो अलग, हड्डियाँ अलग, चमड़ा अलग, मांस अलग, चर्बी अलग, आंतें अलग, लीद अलग, इस तरह से मशीनों में काट दी जाती है, हजारों की लाखों की संख्या में। संख्या में कह नहीं सकता कितनी है, पहले तो कुछ आती थे, आजकल बहुत ज्यादा है। और उनके पास आंकड़ा है, वो लोगों ने देखा है, इस तरह से गायों की हत्या कर रहे हैं, और बसरा बसरी की जाकर यहाँ पर बेच रहे हैं। नागौरी बैल बहुत तेज होते थे, नागौर पट्टी के बिहार बसरे ही मार दिए जाते हैं, बैल कैसे होंगे। और इनमें भी जो आँखें हैं, जिनका वो बैलों को नस नहीं काटी गई है, बैलों को संसार नहीं किया गया है, बैल सूदा करना करते वो सूदा नहीं किया गया है, उन बसरों की बसरों के मांस की कीमत बहुत ज्यादा है। और जो वो नपुंसक बना दिए गए हैं, अन्नकोश निकाल दिए गए हैं, ऐसे बसरों का मांस है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और कहा है कि ऐसे उनका मांस इतना तेजी का नहीं होता। तो जरा आप सोचो मेरी बात की तरफ ध्यान दो, कि जब बसरों को भी नपुंसक बना दिया जाए तो उनका मांस खराब होता है, बढ़िया नहीं होता। तो मनुष्य भी तो नसबंदी करा देते हैं, माता बहनों हमारी भी अगर ऑपरेशन करा लेती है तो उनका मांस भी निकमा हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। जोधपुर में एक नारायण है, उसने मेरे को कहा था कि स्त्रियों के बड़े बड़े रोग होते हैं ऑपरेशन करने से, प्रदर हो जाता है, लाल प्रदार सफेद प्रदार होता है, वो प्रदर फिर बंद नहीं होता, उसे वो स्त्री मर जाती है। स्त्रियों के छाती में, पीठ में, करियों में दर्द रहता है, उठने बैठे में चक्कर आते हैं, ऐसी स्त्रियों की बीमारी होती है, केवल उनके ऑपरेशन करने के कारण ऐसी ऐसी बीमारी होती है। तो अभी मारना ही है लोगों को सबको, तो स्त्रियाँ पहली मर जाए तो अच्छी बात, और गर्भ में मर जाए तो अच्छी बात। अरे गर्भपात करने के बाद एक दो बार गर्भपात कर देंगे तो गर्भाशय बहुत खराब हो जाता है, जान करके बच्चा निकालने से फिर उनके गर्भ नहीं रहता, बीमारियां पैदा होती है, ऐसी दशा होती है। तो बीमारियां हो जाती है, हिंदू मर जाए स्त्रियाँ मर जाए तो अच्छी बात है, अगर संकट पैदा नहीं होगा उनके एक मनमानी ऐसी सिद्ध हो जाएगी, ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो भाई बहनों से मेरा कहना आप मान ले, मैं बहुत कोई 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ ये बात, मेरी सुनते ही नहीं और कोई साधु कहते नहीं। साधुओं ने उल्टा कलकत्ते में मेरे से कहा कि ये बात आप क्या करते हो, ये काम तो ग्रस्तियों का है, साधुओं को संतान की बुद्धि स्त्रियों की बुद्धि ऐसी बात साधुओं को नहीं करनी चाहिए, ग्रस्ती कहेंगे तो वो ग्रस्तियों के कहने की साधु मत को। मैं वो ग्रस्ती कहाँ से आएगी, साधु भी कहाँ से आएंगे, जब हिंदू ही मर जाएंगे तो जन्म के तो हिंदुओं के घर में भी साधु होते हैं, हम कोई ऊपर से थोड़े ही बरस है, माता है इनका ही दूध पीकर हम, इनके जन्म लेकर इनका दूध पीकर कि हम बड़े हुए हैं। अगर स्त्रियों के बालक नहीं हो तो साधु भी कहाँ से होंगे, फिर साधु को नहीं कहना चाहिए, किसको कहना चाहिए, कौन कहेगा। साधुओं में भी हमारे एक गोरखपुर के महंत जी वैद्य प्रसाद जी है, नाथ जी है, वो नाथ जी कुछ ऐसी बात कहते हैं और मैं साधुओं की नहीं सुनी कि साधु कोई कहता हूँ, वो कहते साधुओं का काम ही नहीं है, तो ग्रस्तियों का काम है, हम कहते ही नहीं। मैं तो पहले कहता हूँ सबसे हमारी बात सुनेगा कौन, शास्त्र कौन पढ़ेगा, हिंदुओं के शास्त्रों को पढ़ेगा कौन, जब हिंदू ही नहीं रहेंगे, क्या मुसलमान पढ़ेंगे, क्या ईसाई पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा। तो शास्त्रों में दुनिया भर में भूमंडल मात्र में ये बात प्रसिद्ध है, और लोग कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में जितना विशेष वर्णन है वैसा किसी देश की किसी भाषा में किसी पुस्तक में ऐसा नहीं है जैसा कि इस संस्कृति में वर्णन है। तो फिर हिंदू ही नष्ट हो जाएंगे तो कौन पढ़ेगा, आज हिंदू रहते हुए भी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, रामायण का पाठ तो अलबत्ता कुछ करते हैं पर पढ़ते नहीं है, ऐसी दशा हो रही है। जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ेंगे, शासन क्या दशा होगी, ऐसी बात है। आज मुसलमान मुसलमान बनाने के लिए तैयार है और सरकार भी उनको साथ देती है, उनके लिए कानून में टैक्स में भी उनके लिए रियायत की जाती है, अल्पसंख्यकों को मदद करनी चाहिए, ऐसे मदद करती है। और ये जैसलमेर का प्रांत है बिल्कुल बसरपुर आदि, वहाँ भी मैं गया हूँ, वहाँ मुसलमान है कहीं कामख्या नहीं, वे मुसलमान हिंदुओं से ही बनाए हुए हैं, क्षत्रिय जाति अभी तक सोलंकी है, पवार है, जिस तरह से माड़ियों की यहाँ जातियाँ है क्षत्रियों की जात से, ऐसे उन मुसलमानों की भी एक क्षत्रियों की जातियाँ है। उनके पहले ब्राह्मण व्याकरण आदि जाते थे, वो मुसलमान बनाए गए, और औरंगजेब के समय में मुसलमान बनाने के लिए कहा तो हम मर जाएंगे बनने लड़ने के तैयार, तो उनको क्या सब तो मुसलमान बन मत बनो, मर्दुम शुमारी में नाम लिख दोगी हम मुसलमान है, इतना तुम्हारी क्या हर्ज है, हम राजी हो जाएंगे, तुम तुम्हारे हिंदुओं वैसे ही हो। तो नाम लिखा दिया, नाम लिखा मौलवी जाकर उनको बताते हैं, और अभी तक हमारे बड़े गुरु भाई और वहाँ गए वे कहते हैं बिल्कुल हिंदुओं की रीति से विवाह होता था, ब्राह्मण जाते थे, अभी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई इसके बाद में ब्राह्मणों को बंद किया और वे मुसलमान बन गए, और अभी मुसलमानों ने जोर दिया सरकार ने वहाँ बिकूपुर बसरपुर प्रांत में जैसलमेर प्रांत को सबको मुस्लिम देश घोषित कर दिया है, चाहे मुस्लिम देश है, ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये मुसलमानों का देश है, वो मुस्लिम देश हो गया है। ऐसे उनके कई जगह ऐसा हो रहा है जिसमें मुसलमान बना देते हैं। आपके नागौर में कई कई दुकान है जो इलेक्शन के लिए समय कहा कि ये मुसलमानों को, मुसलमान कहा ये दे दो तो हम करें, तो वे दे दिए गए हैं। तो आप लोग छिपे नहीं, आपके गांव की बात मेरी तो सुनी हुई है, आपकी देखी हुई बात है, मुसलमानों को बाजार दे दिया गया, दुकानें दे दी गई, जमीन दे दी गई, अब वो पीसी में हिंदुओं को मिलेगी कभी, राज सुबह करेंगे तो 5 वर्ष और पीढ़ियां दर पीढ़ियां हिंदुओं की जायदाद सब छीन ली गई है, ऐसा किया गया है। और आप लोग विचार ही नहीं करते हो, हमारी बात सुनते ही नहीं हो, मैं कहता हूँ भाई ऐसा मत करो, भजन स्मरण करो, इधर अपना ख्याल रखो, तुम अपसर मत कराओ, जिसमें महाराज मेरे को देख सुन करके कोई कोई लोग कहते तुम्हारे को हंसते हैं, लोग कहते हैं हिंदू कृष्ण स्वामी जी को पता नहीं है, बालकों का पालन करना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाता है घर में, सरकार कहती है इतना अनाज कहाँ से आवेगा, जनसंख्या अगर बढ़ गई तो अनाज कहाँ से आवेगा। अभी हमारे पास पत्र आया जिसमें से 50-60 रुपया रोजाना खेती वाले देते हैं। अभी मथानिया में वहाँ 30-40 रुपए का, यहाँ 40-50 रुपया देते हैं, आदमी मिलते नहीं, नसबंदी करने से आदमी कम हो गए। अब मैं तो कितना ही अन्न महंगा हो जाएगा, तो 50-60 रुपया रोजाना मिले, पाव भर अन्न का भी 1 रुपया लगेगा, 4 रुपया किलो भी हो जाएगा, तो भी क्या भूखा मरेंगे? 40 रुपया रोजाना आदमी खा लेगा, 50-60 रुपया आदमी खा लेगा क्या? तो कैसे आपकी ये सब बंद होगी? 40 से 60 रुपये तक और कारीगरों का 1.5 रुपये दाम में मिलता है, 1.5 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया अच्छे कारीगर देते हैं रोजाना हर हमेश इतना, और 50-60 रुपया खेती का काम करने वाले लेते हैं। मैं और मखानिया में ऐसी बात आई कि आदमी मिलते नहीं है, ऐसे आदमी कहाँ से मिले? आदमियों को तो होने का आपने खेती बंद कर दी, उनके तो नसल निकाल दी नहीं, उनके तो गर्भाशय निकाल दिया, हमारे बहनों के भीतर में गर्भ धारण की शक्ति नष्ट कर दी। मनुष्य में मनुष्यता है तो पुरुष में पुरुषता तब रहेगी जो गर्भ स्थापन कर सके। हमारी बहनों में स्त्रीपना तभी तक होगा जब तक वे गर्भ धारण कर सके, गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट होगी। उनको क्या कहें, हमारे तो भाषा में शब्द नहीं है। मनुष्य ऐसा हो तो उसको नपुंसक कहते हैं कि ये गर्भ स्थापन नहीं कर सकता, नपुंसक है, हिंजड़ा है। अब स्त्रियों को क्या कहें, वो गर्भ धारण करी वही हिंजड़ा है, लागारी को सब हिंजड़े हो गए। एक भाई ने कहा पहले बैलों बसनों को संसार करते थे, अब पुरुषों को स्त्रियों को दोनों को संसार करना शुरू कर दिया सरकार ने, चाहे संतान न जन्मे ऐसा संसार कर रहे हैं, उनकी नस्ल उनकी आगारी संतान उत्पत्ति की न कर सके, स्त्री की भी पैदा न हो पुरुष की भी न हो, ऐसा कर दिया है। मेरी कई बहनों से बातें हुई है, उनको कह दिया कि भी हम क्या करें, हमें पता नहीं था, कई तो यूँ ठीक करते हैं, आफत मिट गई हमारी, क्या करें, बच्चों का पालन कौन करेगा। तो एक भाई ने भगीरथ जी राठी ने हमें कहा था कि 1000 बालक तो मेरे को दे देना, छोटे छोटे बालक जो मैं पालन कर लूंगा। अभी जोधपुर में एक संस्था खुली है, उसमें 10-12 बालक ऐसे आए हैं, पालन करते हैं और पढ़ना वो रख देते हैं, कोई छाने से उसमें रख जाओ, हम बालकों का पालन करते हैं। ऐसी संस्था शुरू हो गई बाल पालन करने की। आश्चर्य आता है अन्न कहाँ से मिलेगा, बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं उस वृक्ष में वहाँ देशों में वर्षा ज्यादा होती है, तो वृक्षों के लिए वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य अधिक होंगे तो वर्षा अधिक नहीं होगी? कैसी आश्चर्य की बात है, अन्न कहाँ से खाएंगे? 40, 50 और 60 रुपये रोजीना मिले तो कितना अन्न खाएंगे, कुटुम्ब का पालन भी कर लेंगे, इतने रुपये मिले तो कितना ही महंगा होगा तो भी कोई भूखा मरेंगे। परंतु लोग ऐसे प्रभावित हो गए, बड़े मुश्किल नालमोल हम गए थे, वहाँ पर कई 8-10 पंगे होगा, मोटना खड़ी है और वे प्रांत में घूमती है और सबका गर्भाशय नष्ट करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन कराना इस काम में लगे हुए हैं, और गर्भ गिराने के गर्भवती स्त्रियों को लाकर गर्भ गिराते हैं। गर्भ गिराने पर खून आता है, जैसे जन्म के समय भी खून फैलता है ऐसे खून आता है, उसको डब्बा में भर भर कर ले जाते हैं, क्या करते हैं उसका पता नहीं, औषधियाँ बनती है तो वे लोगों को खिलाई जाती है, कितना पाप होती है, हत्या होती है, हम तो डर जाते हैं। वहाँ एक छोरे को मैंने कहा तुम घर में ऐसा करते हो कि महाराज 8-8, 10-10, 1 के बालक हो जाएंगे, और 10 के बालक होंगे उनके 10-10 बालक हो जाएंगे, तो ये तो सौ हो गया, 10,000 हो जाएंगे, 100 कह देते, 100 में जो 10,000 हो गए हो जाएंगे, 10,000 बालकों को किस सामने मिलेगा इस बात पे लाभ कहते हैं कि ठीक है, इस बात का नहीं मिलेगा। उसने ऐसा हिसाब बताया मेरे को, मैंने उसे जोर से कहा तुम्हारे गांव में 8 बालकों की माँ कितनी है, तुम गिन ला मेरे को बता। तुम तो कहते 10 बालक, मेरे को 8 बालकों की माँ कितनी है। चुप हो गया, बता रहा मेरे को बता कि इन माँ के 8 बालक हुए हैं। मैं जानता हूँ ऐसी माताएं भी है, 8-10-12 बालक हुए हैं, ऐसी माताएं भी कोई कोई है। मैं तो उनको नमस्कार करता हूँ कि माता तुम धन्य हो, तो आपके इतने से संतान लड़का लड़की हो जाए तो हमारे हिंदुओं की रक्षा हो जाए, कुछ हिंदू वंश कायम रहे। ऐसी बात हम तो आशा ये रखते हैं आप लोगों से। अगर उनमें से कोई साधु होगा तो साधु के द्वारा फायदा होता है, अच्छे ब्राह्मण निकलते उनके द्वारा लाभ होता है दुनिया को। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ महाराज बड़े प्रेम से लोग सत्संग सुनते हैं। जोधपुर में मैं गया तो कल परसों गए थे ना जोधपुर, कल सुबह की बात है, भूल जाता हूँ आजकल ऐसी बात है मैं भूल जाता हूँ। तो उसने व्याख्यान दिया दिन में, पहले उनको एक दिन दिया था रविवार के दिन कि जोधपुर सत्संग करेंगे, तो उस दिन बड़े जोर से वर्षा आई। तो मेरे भी कहा कि जो दिन वर्षा, मैं कहो हमने समय दे दी हम तो जाएंगे, वे मना करते। फिर उनका फोन आ गया, यहाँ मत आना, आज यहाँ वर्षा बरस रही, पानी भरा हुआ है सत्संग में, वहाँ बैठेंगे कहाँ लोग। तो मेरी मना हो गया, अब कहाँ जाओ बताओ, वो बुलाने वाले ही मना करते हैं, तो अब किसके घर जाओ, कहाँ जाओ, हम नहीं गए। फिर कल समय हमने दे दिया था खड़ा पे, तो खड़ा पे महाराज से पूछा तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ आ जाते भिक्षा यहाँ करते, भिक्षा यहाँ कर लेंगे, तो भाई जोधपुर में आपके सत्संग करा देंगे, भिक्षा तो खड़ा पर जाकर करेंगे। तो उन्होंने समय भी दिया, भिक्षा भी वही है, तो वही तो हम सत्संग वहाँ जोधपुर में किया। पानी बरस रहा था, सत्संग जो गांधी मैदान में सत्संग होता है वहाँ पर पानी भरा हुआ था, और पास में गीली जमीन थी, ऊपर बारीक 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 बूंदे पड़ रही थी, उसमें लोग हजारों की तादाद में आए और बैठे थे वहाँ गीली जमीन में। हमारी बहन माताएं भी बैठी थी, सज्जन पुरुष भी बैठे थे उसी गीली जमीन में, और सत्संग किया। मैंने कभी ऑपरेशन आदि मत करना, हमारे क्षत्रिय जो हमारे रक्षक है वही आज नाश करने के लिए है। थोड़ी दिन से फिर जोधपुर में आए, ये बात मैंने सुनी कि जोधपुर में क्या हो गया, तुम नसबंदी कराओ, तुम ऑपरेशन कराओ, ऐसा कर। उन्होंने प्रचार किया, मेरे से बात हुई, मेरे को तो कहने ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, और फिर किया वैसा ही वहाँ कर, ऐसा किया। तीसरे से भी करते हैं तो आप मत करो। मैंने कहा जब स्वराज हुआ उस समय 8 करोड़ मुसलमान थे, किसी ने 84 करोड़ का, हमारे सदस्य आप भूल जाते हो, 30 करोड़ जो मुसलमानों ने खुद ने कहा है कि हम 30 करोड़ हो गए हैं, 8 करोड़ के 30 करोड़ हो गए हैं, 8 करोड़ थे जो, तो वन बढ़ रहे हैं। एक मुसलमान के लड़का लड़की 60 है, 3 तो ब्याह किया है, 60 लड़का लड़की है, तो सुना कि एक ब्याह और मैं करूँगा। इस तरह से मुसलमान तो सृष्टि बढ़ा रहे हैं, ईरान की इधर की अपने हिंदुओं की लड़कियों की बिक्री हो रही है, 1,000-1,500-10,000 रुपया देने में छोरियां खरीद रहे थे मुसलमान हिंदुओं की, और मुसलमान देशों में भेज रहे हैं, और संतान वृद्धि का बड़ा भारी उद्योग कर रहे हैं। वे तो ये कर रहे हैं, हमारी बहन यहाँ नाश कर रही है, पद वैदा ही नहीं हो, बच्चे ही न हो, इससे ही दशा हो रही है। अब इतनी मुसलमान संख्या बढ़ेगी, इधर मुसलमानों को हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाते हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाए जाते हैं, और ईसाई और मुसलमान ये ऑपरेशन नहीं कराते हैं, कोई कराते होंगे तो हमारे पता नहीं पूरा, मगर वो कराते नहीं है। एक सज्जन मेरे को सुनाया कि उसने कहा कि तुम ऑपरेशन नहीं कराते हो। करे अब तो हमारी हिंदुओं के समान की संख्या नहीं हुई, अभी कैसे कराने हम, इनसे बढ़ जाए पीछे देखा जाएगा, अभी हम नहीं कराते, ऐसा कहते हैं। और हिंदू का एक ब्याह नहीं, दो ब्याह नहीं कर सकते, एक ब्याह ही कर सकते हैं। दूसरा ब्याह करे तो कानून ने बंद कर दिया, नेहरू जी ने कह दिया कि हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकता, वो स्त्री मर्यादा ब्याह कर सकते हैं, दो स्त्रियों को नहीं रख सकते। विष्णु मुसलमान चार ब्याह करो बोले, उनके लिए खुली है, हिंदुओं के लिए इसकी बंद ही है। और फिर ये ऑपरेशन ये हो रहा है, और हम आप ना तो पुरुष मानते न स्त्री मानती है। मेरे पास पत्र आया है, एक लड़की बड़ी अच्छे घराने की क्षत्रिय कुल की, उसका पत्र आया मेरे पास। वो कहते महाराज मैं क्या करूं, पति कहते तुम बिल्कुल ऑपरेशन करा दो। मैं कहता हूँ आप क्यों चिंता करते हो, बच्चों का मैं पालन करूंगी, मैं रख लूंगी। इतने पर मेरे को तंग करते हैं, बहुत दुख देते हैं, और कहते हैं तुम ऑपरेशन करा लो। मेरी बात सुने भी स्वामी निषेध करते हैं। तो बच्ची ने मेरे पास पत्र लिखा, जन बहन बेटी को ही अपने बाप को भाई को लिखे, जो लिखा प्रेम से मेरे को पत्र लिखा। अब मैं क्या करूं, ऐसे मेरे को तंग कर रहे हैं। फिर मिली भी वो, ऐसे लोग तंग कर रहे हैं, पुरुष स्त्रियों को तंग कर रहे हैं, और स्त्रियों को तंग कर रही है। एक भाई के बच्चा पैदा हुआ, दो तीन पारक हुए तो स्त्रियां पीछे पड़ गई, तो ऑपरेशन करा ले, तो ऑपरेशन करा ले। वो सज्जन कहता था कि मेरी स्त्री को तंग कर लिया इन स्त्रियों ने, ऐसी को स्त्रियां है जो ऐसा काम करने वाली, कहीं बताओ क्या नाम धरा मैं पता नहीं है, ऐसे तंग कर लिया। तो हम कह हमारे कराना नहीं है। अंत में डॉक्टर ने कहा कि ये अगर ऑपरेशन करते मर जाएगी, तब पिंड छोड़ा है स्त्रियों ने, स्त्रियों ने कभी तुम पर आपस में प्रसार करती है जोर से, बहनों आप तो हमारी माँ हो, आप मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या है। स्त्रियों में परीक्षा होती है, गर्भ में बच्चा है, बच्ची है, बच्ची है तो गर्भ गिरा दो, बच्ची मातृशक्ति है महाराज, मातृशक्ति उसके ही आप नाश कर रहे हो, तो हम कहाँ जन्म लेंगे बताओ। ये बहनों भी ये भाई भी जन्म कहाँ लेंगे, जब आप ही जन्म नहीं दोगी तो कौन जन्म देगा, क्या ऊपर से बरसेंगे। उनमें अच्छे पुरुष निकलते हैं, सदेश जाए दे सूर्य, सहसु पंडित है, पंडित कोई होता है, सूर्य भी कोई सही होता है, भक्ता दर्शु दाता बहुत ही वान का मन, बहुत दुर्लभ अच्छे पुरुष निकलते हैं उनमें निकलेंगे। उसमें कहा कि हम दो हमारे दो, आप ध्यान दे करके सुने, पहले जो स्त्री पुरुष मिलते हैं तो स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष की तरफ स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, काम पीड़ित होकर होता है, उससे जो संतान होगा बढ़िया नहीं होगा। पीछे के संतान होते हैं वो अच्छे होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, पहले के एक दो संतान तो कामुक की दृष्टि से होते हैं तो वो बढ़िया नहीं होते। तो ऐसे ऐसे ही पुरुष जन्मेंगे, क्योंकि एक दो तो वैसे जन्मेंगे, पीछे बंद कर देंगे। एक बात आती है कहने में संकोच होता है, शर्म आती है। मैंने भाई पूछा भी अपनी माँ से भाई हम कितने संतान है, परंतु सबके बाकी अंतिम संतान हूँ मैं। मैं 2.5 वर्ष का था तो पिताजी मर गए थे, ये बात हमने सुनी है। तो पीछे ही पीछे का जिसमें 6 संतान की बात हमारी सुनी है, 6 संतान हमारी माँ के हुए, पीछे पीछे मैं हुआ। तो पहली संतान प्राय अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो आकर्षण दृष्टि से होती है, पीछे संतान अच्छी होती है। नियम नहीं है, पर नियम नहीं हो तो प्रायता तो ऐसी है ही, अब क्या बताओ लोग। अगर हमारी माँ की संतान बंद कर देते हम जन्म कहाँ देते बताओ। हमारी बहना हमारे भाई हुए, पहले बड़ा वो मर गया और फिर बहना हुई, ऐसे बहनों के भाइयों को मैंने दर्शन किए हैं, परंतु पहले वाले मर गए थे। वो कितने मरे मैंने भाई पूछा नहीं, ना बहनों से पूछा, ना भाइयों से पूछा, ना माँ से पूछा, हमारी शंका ही नहीं थी, हम क्यों पूछते थे। बचपन में हमारे को तो साधु बना लोग कहते आप साधु हो गए, आपने ब्याह नहीं किया। भाई मैं वो साधु, मैं तो हुआ नहीं साधु, साधु हुआ ही नहीं। 4 वर्ष का था, 4 16 बड़ा, उस समय माँ ने ला करके साधु बना दिया, अब मैं साधु हुआ नहीं। ना मेरे को त्याग है, ना मेरे बैराग है, ना मैं साधु सा जानता हूँ, ना कुछ नहीं। माँ ने कह दिया जा रहा हूँ, भेद भेद कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ। और माँ रोने लगी, मैं भी रोने लग गया वियोग में, चार वर्षों का बालक। तो माँ अच्छी लगी बालकों को, तो माँ भी रो गए, पर मैं उन्हें हिम्मत कर दी। उसकी एक संतों की बड़ी भक्ति थी, सही नहीं पद आता था माँ को, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, तो दो तीन रात गए पद गाती थी, बड़े सुंदर सुंदर पद गाती थी। श्री जियाराम जी महाराज हुए हैं, कलमों में भेलू चाकू वहाँ रहते थे, बड़े संत हुए हैं, बड़े महात्मा थे। उनकी ऊपर बहुत कृपा थी हमारी माता पर। वो छोटी सी बच्ची थी, उसकी माँ मर गई थी, तो महाराज उनकी कृपा रखते, जियाराम जी महाराज की गोदी में वो खेली हुई थी। वो जो 8-10 साल की हो गई, गगरिया पहनने लग गई, तो बाबा आए बैठे, तो गगरी फेंक करके बाबा गोदी में चली गई। क्यों छोरी क्या करती है तू, गगरी फेंक के बाबा की गोदी में चली गई छोरी, लोग करे। मैंने सुनी है बात, तब मैं देखू तो मेरी माँ ही छोटी, कहती बाबू जाने कहा तो बड़ी लुगई हो गई, मैं तो बच्ची हूँ बाबा जी गोदी में। तो बाबा जी महाराज बहुत कृपा थी उन पर, जियाराम जी महाराज की। तो उसके विचार किया कि मैं, मेरे कोई बालक हो तो मैं साधुओं में देखूं। ये तो मैंने उनके माँ को मैंने देखा भी है, माँ के माँ गया हूँ, मरा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। तो पढ़ता था तो माँ ने समाचार भेजा, तू पढ़ाई क्यों करता है, पढ़ा कर क्या गुंडी कमाएगा। अब ये माइयों की गाँव ही ग्रामीण थी, कुछ जानते नहीं थे, पढ़ाई करके गुंडी कमाता है, मैं रुपया कमाने के लिए साधु नहीं बनाया है, पढ़ने के लिए पढ़ करके उंगली कमावे, इस वास्ते में साधु नहीं बनाया है। मैं तो साधु बनाएगा, राम भजन करे, भक्त बने, भगवान का ऐसा संत बने, इस वास्ते मैंने साधु बनाया है, पढ़ने के लिए थोड़ा ही बनाया है। तो पढ़ गया महाराज, तब माँ समझते नहीं, पढ़ गया। पढ़ने के बाद गया तो मैंने अपनी माता जी को भागवत सप्ताह सुनाई, भागवत की सप्ताह पढ़ गया, पढ़ गया तो सप्ताह मैंने सुनाई माँ को, तो माता को ही तो आज भी सुनावे, बहुत प्रेम रखती थी माँ। और उसके बाद जरूर हो गया था, वृद्धावस्था थी, जरूर पेट में पानी पानी हो गया, वो बड़ी असाध्य बीमारी होती है। वो गई वो जहाँ जियाराम जी महाराज विराजते थे कर्णों में, जिस आईने के नीचे वो विराजते थे, वहाँ जाकर हे वापसी महाराज, हे वापसी महाराज, ऐसे में वो रीति लगाई, जरूर मिट गया मेरी माता का। ये प्रत्यक्ष पर्चा है, इतनी श्रद्धा थी जियाराम जी महाराज में। और महाराज इधर है, उनकी हवा आती तो सास में और नहीं आई हूँ करके, महाराज वापसी महाराज ऐसी हवा है हमारे रची आ जाए मेरे लग जाए, ऐसा उसकी भक्ति थी। महाराज जी बहुत कृपा थी, तो उसके मन में थी कि मेरा लड़का हो जाए। ऐसी बात सुनी है और बातें कहीं सुनी है, कहाँ तो कहें, शर्म आती है कहते हुए अपनी बात कहाँ तो कहें। परंतु उसके विचार ऐसा था कि मेरे साधु हो जाए, मैं साधु देखूं, मेरे को साधु कर दिया, साधु करने के बाद मैं घर पर जाता मिलने के लिए, तो मेरे को बैठा करके पास में बैठ कर बड़े प्रेम से कोई संतों के जो नमस्कार करे, जो मेरे को नमस्कार करती थी, मेरे को होश नहीं था, जानता नहीं था मैं तो, नहीं तो शास्त्र में ऐसा आया है कि माँ अगर सामने आ जाए और साधु हो गया है तो पिता और बड़े भाई तो साधु को नमस्कार करे, पर माँ को नमस्कार कर गंबे पर दंडोत करनी चाहिए माँ को। मैं तो टक्कर बैठ जाता माँ नमस्कार, ये गीती हुई बातें है। तो इतना भाव था, अब विचार करो कि मैं साधु हुआ ही नहीं, लोग कहते तो कभी कभी कहा है ऐसा, कभी मन में आती है कि साधु हो जाएंगे तो क्या करें, ये व्याख्यान सुनाना करना, साधु हो जाए कौन अरंगा कर, साधु हो जाए ऐसी मन में आती है। और से जयदास जी ने कहा कि व्याख्यान सुनाओ, ये उनकी कृपा से मैं सुनाता हूँ, तो मेरे जो मन में विचार व्याख्यान का नहीं था, व्याख्यान दिए, पेटी बजाई, पद गाए, दुकड़ा बजाया, ये गाना बजाना सीखा, व्याख्यान सीखा, कथाएं सीखी, कथाएं की कथाएं भेंट ली, ये सब कर मेरे देखा हुआ। श्री जयदास जी के पास में 89 में गया था, 1989 में गया तो बोल के व्याख्यान दो। मैंने कहा शेर जी व्याख्यान से कथा से गाने बजाने से मैं ढाप करता आया हूँ, मेरे को ये रुचता नहीं है। तब तो बस केवल मेरे को भजन करना है और आपके पास क्या करे, किस तरह से तब तो ज्ञान हो, कैसे जीव की मुक्ति हो, ऐसे उनके लेख देखे मैंने कल्याण में, तो लेख इतने असर किया कि ये पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है परंतु तत्व का अनुभव है, लेखों से मेरे असर पड़ा। ये तुम्हें पास गया कोई 28-29 वर्षों की मेरी अवस्था थी, 28-29 वर्षों की कोई बालक नहीं था मैं। तुम्हें मैं इस बार नहीं व्याख्यान को सुनाओ, फिर उन्होंने कहा ये साधन है, व्याख्यान सुनाना भी साधन है, ये साधन उसे करो। मैंने कहा महाराज इतना अनुभवी पुरुष व्याख्या दे सुनावे शिक्षा, हमारे उतना अनुभव नहीं, मैं उतना जानता नहीं, अधिकारी नहीं हूँ। कहते जो अधिकारी मानते हैं हम अधिकारी, वो अधिकारी नहीं होते, जो अनधिकारी मानते हैं वो अधिकारी होते हैं। ये शेर ने कहा ऐसा तुम अधिकारी क्यों क्या करो, जो अपने में अधिकार नहीं मानते, ऊंचा नहीं मानते, मैं न विद्वान मानता हूँ न जानकर मानता हूँ, ऐसा करता हूँ। तीसरी बात है भाई गीती हुई बात है, अब हमारी माँ के संतान बंद कर दे तो मेरे भाई कैसे आती जन्म लेने की, इस बात लिए संकोच बढ़ते बढ़ते आपको बात सुने क्या करूँ। तो ये बंद कर दोगे तो कोई अच्छा पुरुष भी जन्मेगा तो वो कहाँ जन्मेगा, क्या मुसलमानों में जन्मेगा, क्या ईसाइयों में जन्मेगा, अरे यहूदियों में जन्मेगा, क्या पारसियों में जन्मेगा, ये क्या धर्म पांच एक ऐसे चार पांच ही समुदाय है संसार में, करोड़ों की संख्या भर है, हिंदू है, मुसलमान बहुत ज्यादा है, ईसाई उससे भी ज्यादा है, यहूदी बहुत थोड़े हैं, एक दो देश यहूदियों के हैं, पारसी थोड़े हैं, बम्बई आदि में पारसी है, उनसे मिलने का मेरे काम पड़ा है, वे भी अग्नि रखते हैं, जनेऊ रखते हैं कमर में, ऐसे पारसी वो भी हिंदू ही है, हिंदू से ही बड़े, मुसलमान भी हिंदू से ही बड़े हैं, यहाँ हिंदू जो मुसलमान है भारत सरकार भारत में उन मुसलमानों को एक पंक्ति में नहीं बैठा दे, विदेशी मुसलमान मुसलमान है वे महाराज पठान आदि है, इनको मानते हैं कि हिंदू से बने हुए अशुद्ध है, इनका तिरस्कार करते हैं, ये हिंदुओं का नाश करते हैं, इनका भी तिरस्कार करते हैं, पठान आदि जाति वो कहते हैं असली मुसलमान हम है, तुम तो हिंदू से बने हुए ऐसे दोगले हो, तुम कोई मुसलमान असली मुसलमान नहीं हो, ऐसा तिरस्कार करते हैं, ऐसी दशा है। अब क्या बताऊं आपको, तो ये बात बताई थोड़ी सी, और हमें बहुत बातें कहनी है, और भी बातें सुनावे के क्या कहाँ तक सुनावे, मेरी बातें मानो आप, कृपा करो मेरे पर, इन माताओं के बड़ी मन में होती है स्वामी जी को हम भिक्षा दें भिक्षा दें, तो रोटी मेरे कम नहीं मुझे बहुत मिलती है, मेरे तो ऐसी बहनों कम मिलती है, ऐसी बच्चियां नहीं है छोटी अवस्था वाली, मैं तो उनको छोरियां कह देता हूँ, 10-15-20-25-30 साल की हो तो मैं तो छोरी कर छोरी मेरे सामने छोरी है बड़ी है तो अच्छी बात है, मैंने ये रीस नहीं करती, इतनी बड़ी को छोरी करके रीस नहीं करती, ये कृपा रखती है, ये तो लोग कह देंगे मेरे छोरी कैसे, मैं तो एक छोरी हो गई दोहिता हो गया पोता हो गया, छोटी सी थी बात गोदी में, जल्द से मैं जानता हूँ तो कहीं जानता हूँ ऐसा छोटी अवस्था हो गया, महाराज भाई मामा मेरे को तो चली बना गया भाई चली गया बना छोटी छोटी बड़े दुहिता हो गया पोता पोती हो गया, अब मैं क्या कहूँ। एक दिन की बात है बम्बई की, जो डोंगरे जी महाराज थे मेरे सामने, तो एक लड़की जो 30-40 वर्ष की होगा भाई, उसमें उन्होंने कहा माता जी, मैं कहा महाराज मेरे को माता जी नहीं कहा जाता, मेरे माता बुद्धि होती ही नहीं, मैं तो छोड़ समझता हूँ माता बुद्धि में कैसे कह दूँ, बूटी बड़ी तो माता जी मैं कह देता हूँ, माता जी कहता हूँ माँ जी बाजी करता हूँ, परंतु मेरे सामने 30-40 वर्ष की तो छोरी है मेरे सामने, तो इनको माता जी कैसे कहा जाए, उन्होंने ऐसा कहा मेरे को महाराज मेरे को शर्म आती है, छोरी तो मैं कह सकता हूँ माता जी कैसे कहूँ, मैंने मन करता ही नहीं, मेरे भाव पहले ही माँ का भाव पहले ही नहीं होता मेरा, कैसे कर दू, ऐसी बात है। इसमें पर भी हमारी बहन नाराज नहीं हो, मैं राजी होती है, तो कृपा करो इतने से कि अपने छोरियों को अपने बहुओं को ऐसे नपुंसक मत बनाओ, इतनी हिंद्रा मत बनाओ, उनको ऐसे जिसके मत बनाओ। अच्छा दस दस आपके संतान हो, मेरे को बातें सुनाओ तो हम राजी हो गए। अच्छी बात है कि हमारा कहना कोई मानता तो है। ऐसी बहुओं को बेटियों को ऐसी बनाओ जिससे लोग नाश करने के लिए ले कुठार पड़े। मुसलमान को मुसलमान मत कहना, ईसाई ईसाई पढ़ाते हैं, सरकार नपुंसक मनता है, सरकार संतान का विरोध करता है। अब हमारी सहायता कौन करे? तुम माताओं हो, मासिक जाति मैं कहता हूँ छोटी बच्ची को, गर्भ में भी बच्ची ऊँचे गर्भपात करते हैं तो मैं कहता हूँ अरे मातृशक्ति है ये, मातृशक्ति बड़ा पाप लगेगा तुम्हारे को पाप करने से, तो मातृशक्ति का नाश करते हो। और भाई एक बात मैंने सुनी, आप तो यहाँ महेश्वरी हो ही, महेश्वरी नाथ का ये नोरा है आपका, तो उसमें सुनी है कि महेश्वरी में लड़कियाँ कम हो गई है। मेरे बचपन में सुनी है मैंने, उस वक्त में स्त्री वाले पैसा लेते थे तो जन्मी बच्ची जन्मी है महेश्वरी बात, मेरे प्रत्यक्ष में देखी हुई बात है, लड़की जन्मती तो लोग कहते थैली आई है थैली रुपयी थैली, आज बेटी जन्मती है तो कहे भाटो आयो भाटो। गांधी जी को पूछे महाराज कहीं जन्मे को भाटो आयो है, आज भाटो गए मेरे, क्यों पैसा लगाना पड़े? जब पैसा मिलता था तो रुपयी थैली कहते थे छोरी को, तो उन छोरियों की माँ आई मातृशक्ति है महाराज, बच्चिया मातृशक्ति। कन्या है तो धर्म की मूर्ति है, कन्याओं के भोजन करने को वो मातम होता है जो वास्तव में ब्राह्मणों आदि को किया जाए, वो उसका मातम है। देवी स्वरूप भगवती स्वरूप है कन्या, इसने उसका तिरस्कार करती है बहनों माताएं। अब क्या करो, लोग प्रेरणा करते हैं कि अब बंद करो, घड़ी भी है मेरे पास में, अब दूसरी मन है मेरे, कई बातें है सुनाने जी, फिर आप कृपा करो सुनाऊंगा उसका।